समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
अगर कोई आवाज हमारे मन को छू जाए तो हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है, और उस आवाज को मुकम्मल तरीके से पहुंचाने का एक जरिया है रेडियो, जो संचार के इतने माध्यम होने के बावजूद आज भी अपनी खास पहचान बनाए हुए है। आज विश्व रेडियो दिवस और आज कार्यक्रम परिक्रमा में आवाज की दुनिया की दो राही आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। यस, द डे टुडे रेडियो डे इज अबाउट सेलिब्रेटिंग अ मीडियम दैट इज अ ट्रस्टेड वॉइस फॉर पीपल, बी इट इन रिमोट विलेजेस और बसलिंग सिटीज। For years, the radio has delivered timely information, amplified talent, and encouraged creativity. This is a day to acknowledge the efforts of all those associated with this medium. And still, radio remains in fashion and highly relevant in this century as well, because it has evolved to combine traditional, trusted, and free content with modern digital technologies. Isn't it, Priyanka? So, in this world of screen fatigue, we are driven by the need for human connection, and here we are with you on radio every day, come what may.
बिल्कुल सही समय पर आपके पास पहुंच जाते हैं, और आज भी ठीक 4:30 बजे आपके पास पहुंच के देश विदेश की खबरें लेकर और खेल जगत आर्थिक जगत की हलचल भी हम आपको बताएंगे, और हमेशा की तरह क्षेत्रीय संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे, तो बहुत रहेगा आज के अंक में भी। तो रहे हमारे साथ और आगाज करते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइन से।
जी, First phase of budget session concludes. Both houses of parliament to reassemble for second phase on the 9th of next month after a 3-week break.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत और दो अन्य सरकारी भवनों वाले सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया।
Bangladesh Nationalist Party is set to form next government after a landslide victory in parliamentary polls.
Pradhan Mantri Narendra Modi ne BNP Pramukh Tariq Rehman ko party ki nirnayak jeet par badhai di. Kaha Bharat loktantrik, pragatishil aur samaveshi Bangladesh ke prati hamesha pratibadh.
And Akashwani Raipur hosts a conclave to mark World Radio Day, exploring medium's evolving role amid emerging technologies. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And of course, Priyanka, today we will talk about World Radio Day. The power of radio is not that it speaks to millions, but that it speaks intimately and privately to each one of those millions. Rightly said by Halle Flanagan. On World Radio Day, we speak through the heartbeat of the airwaves themselves, celebrating radio, the invisible thread that carries our voices across distances and unites us as one.
जी हाँ अनुजा, आवाज की दुनिया का अलग ही रोमांच है। और एक बार मैं ऑटो से जा रही थी तो जो रेडियो चालू था, आकाशवाणी चल रहा था, और मैंने पूछा आप आखिर रेडियो क्यों सुनते हैं, उसमें क्या खास है? तो उनका जवाब था कि रेडियो हमारा साथी है, जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ साथ चलता है।
वेरी ट्रू। इन फैक्ट विश्व रेडियो दिवस आज है प्रियंका
जी,
तो उसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने
यूनेस्को ने की थी, और उसके द्वारा 2011 में अपने 36वें आम सम्मेलन में की गई थी, और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में अपने 67वें सत्र के दौरान अपनाया गया, और ये प्रतिवर्ष 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रसारण शुरू किया था। तो वैश्विक संचार और सूचना जो साझा करने के प्रति प्रारंभिक प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है।
Yes, and the theme this year is Radio and Artificial Intelligence. AI is a tool, not a voice. Radio slips quietly into daily life, asking for little, but offering companionship, information and a sense of belonging. Even in metropolitan cities like Delhi and Mumbai, FM radio continues to be a part of the daily urban life. With taxi and auto drivers, as you just mentioned, they tune in for traffic updates, cricket commentary, music and interactive shows, underscoring radio's enduring relevance even in a highly digitized city these days.
Nisandeh, aur radio ghoshnaon ke madhyam se kai aitihasik kshan samuhik smriti mein ankit ho jate hain. Bhala koi 14 se 15 agast 1947 ki us raat ko kaise bhool sakta hai jab radio ne bharat ki swatantrata ki ghoshna ki thi. Use प्रसारण में रेडियो ने केवल समाचार ही नहीं पहुंचाया, बल्कि एक विशाल विविधतापूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता की एक साझा ध्वनि में एकजुट कर दिया था. और आकाशवाणी के देश भर में 591 प्रसारण केंद्र हैं, जिनकी लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99% से अधिक जनसंख्या तक पहुंच है. और आकाशवाणी महानगरों के साथ साथ दूर दराज, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी श्रोताओं तक पहुंचता है.
Yes, and to mark the World Radio Day 2026, Akashwani Raipur in Chhattisgarh, in collaboration with UNESCO, organized a World Radio Day conclave today. The special event in Raipur was held in collaboration with UNESCO. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai attended the event as the chief guest. Director General of Akashwani, Rajiv Jain, UNESCO's Regional Advisor for Communication and Information, Hajjaj Malik, several public representatives, Padma Shri awardees and experts from various fields took part in the program. Here is what the Director General of Akashwani, Rajiv Jain, said on the relevance of this year's theme for Radio Day.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के सभी क्षेत्रों में इस समय प्रारंभिक अवस्था में है, तो ये यूनेस्को की थीम है और इसके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि इसका रेडियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा. रेडियो को हम और ज्यादा समावेशी, और ज्यादा प्रभावी, और लोगों के पास रेडियो को कैसे लेके जाएं, क्या चेंजेस हमारे रेडियो के वर्क फ्लो में या क्या चेंजेस हमारे रेडियो की पहुंच में किए जाएं ताकि हम लोगों के पास और प्रभावी रूप से पहुंच पाए.
और जैसे आपने इस वर्ष का विषय भी बताया कि रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वो एक साधन है, आवाज नहीं है. और ये विषय जो है प्रसारण तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है और ये दर्शाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार सामग्री निर्माण, संग्रहण और अनुवाद को श्रोता सहभागिता तथा सुलभता को बेहतर बना सकता है और इससे रेडियो जो है वो अधिक कुशल और समावेशी बन सके. साथ ही ये जो विषय है इस बात पर भी बल देता है कि जो प्रौद्योगिकी है उसको एक सहायक प्रणाली के रूप में ही रहना चाहिए, ना कि रेडियो की पहचान बन चुके मानवीय आवाज, संपादकीय निर्णय और विश्वसनीयता का विकल्प. हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं इस पर.
Akashwani has been serving the nation since its inception with the motto Bahujan Hitai Bahujan Sukhai. Established in 1936 and brought under public ownership after independence, Akashwani has grown into one of the largest broadcasting organizations in the world in terms of the number of languages broadcast and the diversity of audiences served. Private FM radio complements public broadcasting by delivering local entertainment and information across urban and regional India.
Aur is geet ke baad
chhayegi
aur India radio
mile sur mera tumhara.
In his message on the occasion of World Radio Day, Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan said radio plays a crucial role in disseminating information to the common people. He also recounted listening to the radio while growing up.
The radio played an important role from the freedom movement. Radio contributes to the news industry and information taking to the common citizen.
Radio is intimate yet expansive, simple yet powerful. Radio is a trusted medium connecting distant geographies, diverse languages and countless lives through shared listening. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
And yes, when natural disasters or crises disrupt electricity, internet services or other communication networks, radio often remains the most reliable source of trusted and timely information. And during emergencies and natural disasters, Akashwani or All India Radio previously had consistently provided timely alerts and verified information. Even today, it continues to be a lifeline for public safety and awareness. And radio's strength lies not only in its reach, but in its relevance as well.
और आज अब हम जब रेडियो के जादू का जश्न मना रहे हैं तो हम उस आवाज को याद करते हैं जो भारत की रेडियो जगत का अभिन्न अंग बन गई, अमीन सयानी की आवाज. आकाशवाणी से ही अमीन सयानी ने एक प्रसारक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी. उन शुरुआती स्टूडियो में माइक्रोफोन के पीछे एक युवा आवाज ने लोगों से बात करने की कला सीखी, न कि उन पर थोपने की बल्कि उनसे संवाद भी स्थापित किया.
Yes, Amin Sayani brought warmth to the airwaves. His tone was gentle, respectful, and full of sincerity. Through Akashvani, he mastered the craft of communication, clarity of speech, emotional connection, and the ability to make every listener feel personally addressed. In an age before television and the internet, All India Radio or Akashvani was the heartbeat of the nation, and voices like Amin Sayani's gave that heartbeat its rhythm.
बिल्कुल, उन्होंने हमें दिखाया कि रेडियो सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये एक साथ होने का माध्यम है, ये विश्वास है, ये दिलों के बीच का एक सेतु है.
नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ.
आप सुन रहे हैं विविध भारती.
मेरे लिए गीतमाला सिर्फ एक हिट प्रोग्राम नहीं है, वो मेरी शख्सियत, मेरे वजूद का एक हिस्सा है और आज तमाम इतिहास इस कारवां में शामिल हो गए हैं.
Dr. Priyanka, when we speak of Akashvani, we speak of more than a broadcasting service. We speak of a legacy, a platform where some of the greatest personalities of India found their voice. From historic moments to soulful music, All India Radio has always been home to legends. Take Melville DeMello, for example, the voice that described the dawn of India's independence and the final journey of Mahatma Gandhi. Through him, the nation felt history unfolding.
Now is the flames... begin to lick. A roar goes up from the crowds. Now the fire is caught. More pieces of sandalwood would have been placed. Garlands being flung into the air. Policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the father of our nation.
आकाशवाणी भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के लिए भी एक मंच था. कल्पना कीजिए, सुबह एमएस सुब्बुलक्ष्मी की दिव्य आवाज से गूंजती हो या शाम में भीमसेन जोशी की शक्तिशाली प्रस्तुतियों से भरी जाती हो.
नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः.
And let's not forget the sitar maestro Ravi Shankar, who contributed to shaping the musical richness of Akashvani's programming.
समाचार से लेकर संगीत तक, संस्कृति से लेकर राष्ट्रीय क्षणों तक, आकाशवाणी ने हमेशा देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों और आवाजों को आकर्षित किया है. शायद यही आकाशवाणी की असली ताकत है. न केवल इसके ट्रांसमीटर और स्टूडियो बल्कि वे असाधारण व्यक्तित्व जिन्होंने इसे आत्मा प्रदान की.
एंड इवन टुडे एज द एयरवेव्स कंटिन्यू टू कैरी स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, द लेगेसी ऑफ दोज ग्रेट वॉइसेस रिमाइंड्स अस, आकाशवाणी इज नॉट जस्ट हर्ड, इट इज फेल्ट. In an era dominated by digital and social media platforms, the choice of radio by Prime Minister Narendra Modi as a primary medium for direct communication with citizens underscores the enduring relevance and trust associated with radio.
जी हाँ, मन की बात की निरंतर सफलता रेडियो की व्यापक जनसंपर्क क्षमता को पुनः स्थापित करती है, जिससे ये विश्व रेडियो दिवस की भावना के अनुरूप समकालीन सार्वजनिक संचार में एक शक्तिशाली और प्रासंगिक माध्यम बन जाता है. क्या आप जानते हैं श्रोताओं, पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था.
एंड नॉट टू फॉरगेट राम सिंह बौद्ध फ्रॉम अमरोहा उत्तर प्रदेश. He is known as the Radio Man of India. He was recognized by Guinness World Records in 2025 for owning the world's largest collection of 1,257 radios. Despite rapid digitalization, radio remains vital in reaching diverse and undeserved populations, overcoming barriers of literacy, language and connectivity, and supporting public information, education and disaster communication.
जी हाँ, मीडिया परिदृश्य में हो रहे बदलावों के साथ आकाशवाणी समावेशिता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्ध रहने का जो एक विश्वास है वो जारी रखता है और यही विश्व रेडियो दिवस की चिरस्थायी भावना है.
This day highlights the continued relevance of radio as a trusted, easily accessible and inclusive medium.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जानने का और खासकर ये जानने का कि विश्व रेडियो दिवस पर वहाँ आज क्या क्या आयोजन हुए.
जी हाँ, सो वेयर डू वी बिगिन विद प्रियंका.
जी हाँ, सबसे पहले चलते हैं आकाशवाणी अहमदाबाद परिसर में. वहाँ विश्व रेडियो दिवस को धूमधाम से मनाया गया और इसी के साथ संस्कृति और रेडियो का अनोखा संगम भी लोगों को देखने को मिला. आइए सुनते हैं इस बारे में खास रिपोर्ट.
देश का लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी भी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण संस्थाओं में से एक है. आकाशवाणी अहमदाबाद परिसर में भी आज धूमधाम से रेडियो दिवस मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इस अवसर पर आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों गरबा खेलते देखे गए. इसके साथ ही आकाशवाणी परिसर में रखे गए पुराने जमाने के रेडियो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा. पूरे देश की तरह गुजरात में भी आकाशवाणी को सुनने वाला अलग ही वर्ग है. इसमें भी दृष्टिहीन लोगों के लिए रेडियो एक वरदान समान बन गया है. इसी तरह आकाशवाणी को बरसों से सुनने वाले जामनगर के एक श्रोता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का प्रतिभाव सुनते हैं.
ये रेडिया का माध्यम इतना अच्छा है कि उसको क्या बोलू, 1101% बोलू. ऑपरेशन सिंदूर में पूरी रात लेकआउट होती थी, तभी रेडियो को मेरे को अच्छा प्रसारण मिलता था. इसलिए पूरा रेडियो का स्टाफ और आकाशवाणी को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ.
आकाशवाणी को सुनने वाले श्रोताओं आज भी हाथ से लिखे पत्रों के जरिए अपनी बात आकाशवाणी कार्यालय तक पहुंचाते हैं और आकाशवाणी के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियेचा.
इवन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रियंका, रेडियो कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स यूनिक रेलेवेंस इन केरला. फॉर सम केरलाइट्स इट इवोक्स अ डीप सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया. फॉर अ लार्ज मेजॉरिटी हाउएवर इट रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. लेट अस लिसन मोर फ्रॉम आवर तिरुवनंतपुरम कॉरेस्पॉन्डेंट.
Across Kerala, radio is a constant companion heard in homes, tea shops, buses and workplaces. Many listeners consider radio news authentic and reliable, appreciating it for its quick and accurate update. While traditional transistor sets are still in use, radio has adapted seamlessly to changing times. Today, people tune in through the mobile applications and modern car radio systems. From nostalgic Malayalam songs and lively FM shows to crisp news bulletins, radio beautifully blends tradition with technology. In the fast-moving digital world, radio in Kerala continues to remain warm, credible, and close to the people. Now, let's listen to the words of C. Habib, an assistant professor who is also a visually challenged social worker.
I'm assistant professor of English at Farooq College, Calicut, and also an executive member of All India Confederation of the Blind, New Delhi. We know that radio is a very important media of communication today. Agashavani provides information, entertainment and well-being to people of all walks of our life. Especially Agashavani and the radio are important components of the life of people with visual impairment. Despite the presence of all other media, radio remains an unavoidable part of their life and it plays a significant role in molding their life through the information and entertainment it provides.
For many Keralites, radio is not just a medium, it's a timeless companion that continues to resonate through every journey. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
Talking about the business news of the day, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended sharply lower today amid broad-based selling pressure. The markets opened with a gap down as selling pressure dominated the session and dragged the indices deeper into the red by the close. The Sensex nosedived 1,048 points or 1.25% to close at 82,627, while the Nifty sank 336 points or 1.3% to settle at 25,471. For more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening. And if we come to the sports news, In one match, Zimbabwe defeated Australia by 23 runs in the Group B clash in Colombo this afternoon. Meanwhile, USA will face off against Netherlands at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. The match is scheduled to begin at 7 p.m. and there's an ongoing match between Canada and United Arab Emirates, which is underway in Delhi.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन
13 फरवरी इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर बुधू भगत बुधू भगत वॉज बोर्न ऑन 17 फरवरी 1792 इन सिलागाई विलेज ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट He was the leader of Khol Rebellion of 1831-32 in the region of Chota Nagpur Plateau. The revolt is also known by the name of the Larka Movement.
During the Khol Rebellion, Budhu Bhagat led the Khols against the local zamindars who were loyal to the British. He also wanted to protect the forest resources. During the rebellion, the British soldiers killed the innocent people indiscriminately. Elderly people, women and even children were not spared by the British. To save people, Budhu Bhagat jumped into the fight against the British with his two sons, Haldar and Giridhar. Budhu fought valiantly, but he was surrounded by the British army, which was led by Captain Impey.
He knew that the merciless British army will shoot all the innocent villagers. Thus, to save the people, Budhu proposed surrender. However, the brutal English officer ordered the army to fire upon them, and the brave leader of the people was martyred on February 13, 1832.
13 February 1879 is also the birth anniversary of the Nightingale of India, Sarojini Naidu. Born in a Bengali family in Hyderabad, her maiden name was Sarojini Chattopadhyay. She was educated in Madras, London and Cambridge. After some experience in the suffragist campaign in England, she was drawn to the Indian independence movement. She returned to Hyderabad in 1898. That same year, she was married to Govindarajulu Naidu.
She participated actively in the non-cooperation movement in the 1920s. In 1924, Sarojini Naidu travelled to Eastern Africa and South Africa to gather support for Indian independence. In 1925, she became the first Indian woman president of the National Congress. She toured North America to raise awareness about the Indian freedom struggle from 1928 till 1929. Back in India, her anti-British activity brought her a number of prison sentences from 1930 to 1943.
She accompanied Gandhi to London for the second roundtable conference.
Speaking in the Constituent Assembly on 11th December 1946, Sarojini Naidu explained the importance of the Constitution of India and how it will empower the Indian people.
Following India's independence from the British rule in 1947, Naidu was appointed as the governor of the United Provinces, present-day Uttar Pradesh, making her India's first woman governor. She remained in office until her death on 2nd March 1949.
Sarojini Naidu was also a prolific writer and poet. She began writing at the age of 12. Her first book of poems was published in London in 1905, titled The Golden Threshold. She is known for her vivid use of rich, sensory images in her writing and for her lush depictions of India. Her second and most strongly nationalist book of poems, The Bird of Time, was published in 1912. Her poem, The Gift of India, criticized the British Empire's exploitation of Indian mothers. Her collected poems have been published under the title The Sceptred Flute and The Feather of the Dawn. We salute the great daughter of the nation.
और आज ही के दिन 1974 में निधन हुआ था प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद अमीर खान का उनका जन्म 15 अगस्त 1912 को इंदौर में हुआ उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्रभावशाली विभूतियों में से एक गिना जाता है संगीत के क्षेत्र में उन्हें के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1971 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया उन्होंने बैजू बावरा झनक झनक पायल बाजे जैसी कई फिल्मों के लिए भी गीत गाए आइए सुनते हैं उनके गायन की वानगी
आज गावत मन में रो झूम गे तेरी तान भगवान आज गावत मन में
The celebrated Indian poet and lyricist in Malayalam literature, O. N. V. Kurup, renowned for his humanist, progressive and deeply lyrical poetry, is also having his death anniversary today. A recipient of the Gyanpith Award in the year 2007, Padma Shri in the year 1998 and Padma Vibhushan in the year 2011, he significantly shaped modern Kerala's literary and cultural landscape through his extensive work in poetry, drama and film songs. Often called a poet of the people, his works reflected a strong commitment to environmentalism, social justice and progressive ideology. He also contributed to films. He was a prolific lyricist for Malayalam cinema, contributing to hundreds of films and earning numerous awards for his poetic film songs.
Kalila manjalil neeyaadumbo aadunnu kannairam chaanjakkam thamara poomiyil chaanjaadum swapname.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था जाने माने साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास का. उन्हें व्यंग्य विनोद की नई धारा का जनक माना जाता है. उन्हें ब्रजभाषा और पिंगल का विद्वान भी कहा जाता है. अगर आप उनकी रचनाएं कविताएं पढ़ें तो उसमें हर रंग और हर रस मिलता है, फिर चाहे वो हास्य रस हो, व्यंग्य, वीर रस और कई अन्य. उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया जा चुका है. आपको पता है कि वे हास्य रस अवतार के नाम से प्रसिद्ध थे. ऐसे में उनकी लिखी पंक्तियों के जरिए उनकी वानगी पेश की जाए. उनका कलम उन्हें लौटाया, धन्यवाद जी. पत्र लिखा तो उत्तर आया, धन्यवाद जी. छायावाद, रहस्यवाद तो बहुत सुने थे, किंतु कहां से आ टपका ये, धन्यवाद जी. नाक काट कर उसे उड़ा दो, धन्यवाद वह दोशाला है. पाकर हाथ जोड़ने पड़ते, ठंडी कॉफी का प्याला है. जी हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने धन्यवाद का व्यंग्य उस पर कसा है.
राइट. एंड मूविंग ऑन, अखलाक मोहम्मद खान, फेमसली नोन बाय हिज पेन नेम शहरयार, was one of the leading Urdu poets and academicians in India, who is having his death anniversary today. At a time when Urdu poetry used to embrace themes of melancholy, irony and sadness, Shahryar introduced a new chapter in modernism within Urdu poetry. Apart from his literary achievements, he is well known for his contribution to film industry as a lyrics writer. He has written songs for Bollywood films like Umrao Jaan and Gaman.
सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है?
जी हाँ, शहरयार की शायरी में जिंदगी की हकीकत और तन्हाई का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है. जैसे ही इन पंक्तियों से भी झलकता है कि जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें. उन्हें साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
Right, and moving on, today is...
जी हाँ, आज ही के दिन जन्म हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का. देश सेवा में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. 1971 में भारत के पूर्वी मोर्चे में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने कौशल और साहस के बल पर करीब 100,000 सेना को घेर कर लेफ्टिनेंट जनरल ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और पाकिस्तान के उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को समर्पण पत्र देना पड़ा, जिसके बाद नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया.
Yes, he was awarded the Padma Vishishta Seva Medal and the Padma Bhushan for his service. And as the general commanding the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Dehrav Theater, General Arora received the surrender from the governor of East Pakistan and the commander of the Eastern Command of the Pakistan Army. And moving on, we also pay tribute to Vinod Mehra, who was a prominent Indian actor and producer in Bollywood, active from the early 1970s until his untimely death at 45 from a heart attack. We have a beautiful song from this
movie. महके हुए से राज है आपसे भी खूबसूरत आपके.
जी हाँ, हमारा अंदाज कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। फिलहाल समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।